श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु, एक कुछ हमको वो लीला कथाएं और चरित्र हमको बताएंगे, तो उनका हम स्वागत करते तीन बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो ये कथा हिंदी में होगी।
हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था, इसलिए हम सुध सीधा कथा शुरू करेंगे, ताकि समय भी कम है और बहुत सारे बोलने को है। तीन गोस्वामी जी का कुछ प्रयास करेंगे, गिरिराज जी के पास जो कुछ भी गिरिराज जी प्रेरणा देंगे, कुछ गोस्वामी के बारे में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज की स्थिति पर, इस द्वादशी के तिथि पर, तीनों गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, जो कि बहुत ही एक पावन तिथि है, जहाँ पर एक दिन में तीनों गोस्वामी जी का तिथि है। तो सर्वप्रथम मैं जब पुस्तक पढ़ रहा था, देखा कि तीनों, ऐसा नहीं कि एक दिन में तीनों गोस्वामी अपने शरीर छोड़े हैं, अलग अलग सालों में छोड़े हैं, बट तिथि एक है। तो मैंने देखा कि कौन पहले छोड़े, तो उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये उनके शरीर छोड़ते हैं। तो देखिए, अगर आप राधा कुंड श्याम कुंड, आप कितने लोग गए हैं वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड, आप जब राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा करते हैं, तो एक जगह आता है, ये श्याम कुंड और राधा कुंड के बीचों बीच आता है, उसका नाम है तीन समाधि स्थल, उसको तीन समाधि बोलते हैं। तो खास करके क्योंकि एक दिन में ये तीन गोस्वामी अपने शरीर छोड़े थे, तो उसका स्मरण रखते हुए ये समाधि बनाया गया है, इसलिए उसको तीन समाधि स्थल बोलते हैं। तो वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कबीराज गोस्वामी, तीनों का पुष्प समाधि है। तो आचार्य बोलते हैं कि क्योंकि जब उस समय पर मुगलों का राज था, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो जीवो गोस्वामी को थोड़ा डर था कि कहीं मुगल लोग आके उनके शरीर के ऊपर कुछ खराब ना करें, इसलिए उनका शरीर को अग्नि में दाह संस्कार करके उनका जो राख रहता है उस पे पुष्प समाधि उन्होंने ये तीन किया, उसको तीन समाधि गोस्वामी बोलते, तीन गोस्वामी समाधि। तो इसी तीन गोस्वामी के द्वारा ये समाधि बना है। तो थोड़ा मैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बताऊंगा, और फिर कृष्णदास कबीराज गोस्वामी के बारे में बताऊंगा, और फिर अंततः रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीनों गोस्वामी का अगर देखेंगे, तो उनका दो दो समाधि, वो भी मैं थोड़ा देख रहा था कि सबका दो दो समाधि है। ये तो हो गया तीन समाधि में तीनों का समाधि, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि देखेंगे तो राधा कुंड के तट के ऊपर और एक समाधि है रघुनाथ दास गोस्वामी का, और फिर रघुनाथ भट्ट गो जी का देखेंगे तो फिर राधा गोविंद मंदिर में भी उनका समाधि और एक पुष्प समाधि, और कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी का भी देखेंगे तो उनका भी एक और एक समाधि है राधा दामोदर मंदिर में। तो सबका दो दो समाधि है, पुष्प समाधि है, लेकिन तीनों का एक साथ ये समाधि है, जो कि श्याम कुंड और राधा कुंड के बीचों बीच आता है, उसको बोलते हैं तीन गोस्वामी समाधि। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है, ये तपन मिश्रा जी के पुत्र थे, और तपन मिश्रा जी को जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि आप कृपा करके वाराणसी जाइए, तो तपन मिश्रा बोले कि अरे आप सब लीला करने वाले हैं गौड़ देश में जगन्नाथपुरी में, मुझे भेज रहे वाराणसी में माया नगरी में। तो लेकिन चैतन्य महापुर बोले कि नहीं, अब जाइए वहां पर। तो तपन मिश्रा जी आ गए वाराणसी में, और वहां पर वाराणसी में ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जो बोलता है उनका बचपना, तो वहां पर ही गया है, और वहां पर हमेशा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पापा बोलते थे कि चैतन्य महापुरु आने वाले, तो हमेशा पूछते थे पापा कब आएंगे निमाय पंडित, क्योंकि जब ये आए थे चैतन्य महापुरु तब गृहस्थ थे, निमाय पंडित थे, संन्यास लिए नहीं थे। तो हमेशा बोला जाता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बचपन से ही पापा निमाय पंडित कब आएंगे, निमाय कब आएंगे, तो ऐसा हमेशा पूछते थे पापा को। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं तो इसी वाराणसी होके वृंदावन के तरफ निकलते हैं। और बोला जाता है शास्त्र में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और तपन मिश्रा गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे और अचानक सुनते हैं हरि बोल सब बोल रहे हैं। बोले क्या रे ये माया नगरी में हरि बोल कौन बोल रहा है, क्योंकि सब वहां पर मायावादी भरे थे। तो हरि बोल किधर से आ रहा है? तो बोलते क्या रे कोई तो सन्यासी आए हैं, सबको पागल की तरह नचा रहे हैं, जो भी उनको देख रहा है हरि बोल बोल रहा है। तो तुरंत तपन मिश्रा सोच लेते हैं कि ये जरूर निमाई पंडित आ गए, दौड़ के जाते हैं तो साक्षात, लेकिन जैसे ही देखते हैं उनके आंखों से आंसू टपक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से जब से आए निमाय पंडित जो घुंघराले हुए बालों के रूप में जो गृहस्थ परिवार में थे उनको दर्शन करके हमेशा पूजा करते थे, लेकिन जैसे ही संन्यास रूप में देखते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और उसी समय पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत सेवा मिलता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। उनका हमेशा बोला जाता है कि उनका पैरों का जो मसाज करते थे प्रसाद के बाद, और उनके पास हमेशा रहते थे, खूब सारे सेवा किए चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और इस प्रकार वाराणसी में उनको बहुत सुंदर सेवा करने का अवसर मिला चैतन्य महाप्रभु का। और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जब लौट के चले जाते हैं 2 महीने के बाद पुरी आ जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोलते कि पापा हमको जाना है चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो पापा अभी वो भी वैष्णव है ये भी वैष्णव, पापा बोला अरे मैं तो नहीं मिल पाता बेटा जाएगा जाओ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सीधा वाराणसी से पूरी चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम यहाँ पर क्यों आया, तुम्हारे पापा तो वैष्णव है सेवा करो घर में रखे, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं हमें आपसे साथ रहना है। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, आप जाके पापा का सेवा करो, ऐसा छोड़ के मत आओ। तो लेकिन उनको बहुत कष्ट लग रहा था कि नहीं महाप्रभु आपके साथ ही रहना है। तो चैतन्य महाप्रभु तब क्या किए, अपने गले का तुलसी माला जो रहता है ना, गले का तुलसी माला खुद का खोल के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पहनाते और बोलते कि ये मेरा महा है इसको लेके जाओ, तो हमेशा आपको लगेगा कि मैं आपके साथ हूँ। और तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का खुद उनका खुद का तुलसी माला गले में धारण करके वाराणसी आते हैं। और फिर अपने मम्मी पापा का बहुत सुंदर सेवा करते हैं और 4 साल के लगभग 4 साल में उनके मम्मी पापा जो थे वो अपने शरीर त्याग लेते हैं, छोड़ देते हैं। और जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो फिर तुरंत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चलो पूरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो उधर ही है, तुरंत वाराणसी छोड़ के पूरी चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल थोड़े दिन सेवा करने देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप यहाँ पर मत रहिए, आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में रूप गोस्वामी है और सनातन गोस्वामी है, उनका आप सेवा कीजिए। और फिर रूप गोस्वामी के सेवा करने के लिए वृंदावन पहुंच जाते हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं बोला जाता है कि क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों चैतन्य मनोविष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, सब कुछ रूप गोस्वामी को पता चल जाता था। जैसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जी को देखते हैं, रूप गोस्वामी बोलते कि आपका सेवा भागवत कथा करने के लिए जाना हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनका खुद का कंठी माला आपको दिया है, तो आपके कंठ में चैतन्य महाप्रभु हमेशा वास कर रहे हैं, तो आपके मुंह से जो भी निकलेगा भागवत कथा निकलेगा, तो आप कृपा करके वृंदावन में निरंतर भागवत कथा कीजिए। तो तब से रूप गोस्वामी चैतन्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको ये सेवा दिया। और बोलते कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवत कथा करते थे तो बोलते कि एक श्लोक को उस श्लोक भगवान कौन से भाव में बोले हैं उस भाव में उसको गाते थे, अलग अलग धुन में गाते थे। विरह का कोई अगर वृंदावन का लीला चल रहा है, राधा कृष्ण का विरह लीला चल रहा है, तो उस विरह भाव के उस मीटर में उस ट्यून में उस श्लोक को गाते थे। तो इतना सुंदर भागवत कथा करते थे, पूरा वृंदावन वासी हमेशा इनके मुख से भागवत कथा सुनने के लिए बैठते थे। तो इस प्रकार भागवत कथा करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में। और बोला जाता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कोई पुस्तक लिखा नहीं, बाकी सब गोस्वामी जी ने कुछ ना कुछ लिखा है, इन्होंने कुछ पुस्तक नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब भी समय मिलता था हरि नाम जप करते थे, नहीं तो भागवत कथा करते थे, ये बोलते थे बस, भागवत कथा प्रवचन में बोलते थे हमेशा, क्योंकि यही सेवा चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, उनके कंठ में वास करते थे, तो इसलिए उनको कभी टाइम ही नहीं मिला कि बैठ के कुछ पुस्तक लिखने के लिए। तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का पूरा समय जाता है। और अंततः रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के एक शिष्य थे और उनके द्वारा उन्होंने राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था। राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करने के बाद उन्होंने राधा गोविंद मंदिर के प्रांगण में हर रोज भागवत कथा प्रवचन उन्होंने शुरू करवाया था। तो एवरीडे विदाउट फेल राधा गोविंद मंदिर में भागवत कथा होता था। तो इस प्रकार और कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी जब अपने शरीर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं सबसे पहले, क्योंकि बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, खास करके आषाढ़ के महीने में शरीर छोड़ते हैं। और जैसे ही सनातन गोस्वामी अपना शरीर छोड़ते हैं, एक महीने में रूप गोस्वामी अपना शरीर छोड़ देते हैं। और जैसे ही रूप गोस्वामी अपना शरीर छोड़ते हैं, एक दो महीने में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस विरह में अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो पूरा ये तीन गोस्वामी का देखेंगे तो दो तीन महीने में एक के बाद अपना शरीर छोड़ देते हैं। इतना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अटैच थे रूप और सनातन गोस्वामी से कि अपने प्राणवायु को आगे ले नहीं पाए। जैसे ही दो गोस्वामी गए, वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। इस प्रकार रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जीवनी के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया। और उसके बाद मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बारे में। जो कुछ भी हमको इस चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, उसका कोई अगर श्रेय जाता है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने हाथों से चैतन्य चरितामृत लिखा है, जिसके कारण हम कलयुग के बद्ध जीव यहाँ पर बैठ के कुछ चैतन्य महाप्रभु के लीला को आस्वादन कर पा रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बोला जाता है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, उसका नाम है गोविंद लीलामृत। और इस पुस्तक में उन्होंने राधा कृष्ण जी का इतना सुंदर सुंदर लीला लिखा। और जब जीव गोस्वामी ने पढ़े, बोले कि ऐसा कैसे कोई व्यक्ति लिख सकता है, इतना सुंदर राधा कृष्ण का लीला का वर्णन कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। इतना मुग्ध हो गए जीव गोस्वामी, बोले कि अगर आपके हाथों से गौर लीला भी ऐसा लिखेंगे तो कितना आनंद आ जाएगा। तो जीव गोस्वामी बहुत विनती करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि आप कृपा करके लिखिए, क्योंकि वो मना कर रहे थे, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने लिख चुके थे चैतन्य भागवत गौर लीला लिख चुके थे। तो बोले कि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं क्यों फिर से लिखूं, हम नहीं लिखेंगे बोलते। लेकिन बोलते नहीं, कृपा करके लिखो। जीव गोस्वामी उनको बहुत विनती करते हैं। और जीव गोस्वामी का विनती जब इतना करने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इच्छा करते हैं, लेकिन जब इच्छा करते हैं, उनको आयु कितना हो गया था, 95 बोल जाते हैं। सोचो ये आयु में कोई लिखने का सोच भी नहीं सकता है, मतलब उस आयु में ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे होंगे, हाथ भी थर रहा था, कांप रहा था, बोल नहीं पा रहे हैं, इस अवस्था में कोई कैसे लिख सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि संभव नहीं लिखना, लेकिन सभी वैष्णव का इच्छा होने के कारण उन्होंने प्रयास किया। वो बोलती कि मैं भी जो लिख रहा हूँ ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो लिख रहा है भगवान मेरे से लिखवा रहे हैं और वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये अवस्था में कोई संभव ही नहीं, कोई कुछ लिख सकेगा 95 के एज में। तो कृष्णदास गोस्वामी लिखने का शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत, और ये पूरा बंगाली भाषा में लिखते हैं और एक सुंदर पोएम के हिसाब से लिखते हैं। अगर पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक कितना, वैसे ही बंगाली भाषा बहुत मीठा रहता है, ऐसा लगता है कि मुंह में कोई रसगुल्ला पकड़ के बोल रहा है। तो और उसमें इतना सुंदर गौर लीला लिखे हैं, तो सोचो कितना मीठा लगेगा। तो बहुत सुंदर चैतन्य लीला चरितामृत लिखते हैं, और इतने नम्र थे, इतने नम्र थे, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, कोई अगर किसी का प्रशंसा करता है, तो व्यक्ति अगर दूसरे फील्ड का रहेगा तो प्रशंसा करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप सिंगर है, कोई डांसर है, अरे क्या नाचता है, लेकिन दूसरा भी सिंगर है तो जनरली थोड़ा प्रशंसा करने में थोड़ा होता नहीं, हिचकिचक आता है, क्योंकि एक फील्ड में एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर का करने में थोड़ा मुश्किल होता है। क्रिकेटर बॉलर का कर देगा, लेकिन दूसरे बैट्समैन का, दूसरा बैट्समैन थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, और पुस्तक अगर पढ़ेंगे शुरुआत में है, बीच में है, अंत में भी है। बार बार वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है उनका गुणगान कर रहे हैं। बोले कि अरे मैं क्या लिख रहा हूं, चैतन्य भागवत सब कुछ लिख दिया है वृंदावन दास ठाकुर, और उनका प्लेट में जो थोड़ा उच्चिष्ट बचा है उसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जो एक्चुअली ऑथर है वृंदावन दास ठाकुर ही है। तो देखिए कोई ऑथर चाहेगा क्या, अरे मेरा पुस्तक सबसे बेस्ट पुस्तक है, मेरा पुस्तक पढ़ लो अच्छा है, प्रीफेस में लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं कि मेरा बेस्ट कौन सा है, चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर का, उनका पढ़ो। और मैं जस्ट बाद में थोड़ा उनका जो बचा खोचा उचिष्ट लेके मैं ये लिख रहा हूँ, ये वो है। तो मतलब जो कि आज के कलयुग के लोगों को सोचना, मतलब ये माइंडसेट में डालना थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन ये थे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इससे पता चलता है कि वो कितने नम्र थे, जेन्युइन वैष्णव बोलते हैं ना, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में हम देख सकते हैं। मैं जस्ट पढ़ रहा था तो थोड़ा रिलेट कर रहा था, कितना होगा देखिए, जस्ट ये मेरा थॉट है। मैं जस्ट प्रभुपाद के जीवन के बारे में सोच रहा था, और कृष्ण जब उनका पढ़ने का, क्योंकि अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णा कविराज गोस्वामी, कितने लोगों ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत, बस बहुत कम लोग। देखिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णा कविराज गोस्वामी तीन खंड में चैतन्य लीला लिखते हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। ठीक है, तो आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु का 24 साल के बारे में लिखते हैं, गृहस्थ परिवार। और मध्य लीला अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 24 साल के बारे में लिखते हैं। तो ये जब लिख रहे हैं, आयु कितना है उनका, 95 है। तो आदि लीला लिख दिया तो सोचते हैं कि अरे बचूगा कि नहीं, अंत्य लीला तक जाने तक अपना जीवन रहेगा कि नहीं, उनको थोड़ा संशय आ रहा है, डाउट आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो कंप्लीट कैसे होगा, सीसी लीला कैसे कंप्लीट होगा। तो क्या करते हैं, मध्य लीला का पहला 2 अध्याय में पूरा अंत्य लीला का समरी लिख देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड 2 चैप्टर में पूरा अंत्य लीला, चैतन्य महाप्रभु का पूरा लीला को समराइज करके 2 अध्याय में लिख देते हैं, ताकि आगे जाते मर भी जाऊंगा तो लोगों को तो मिल जाएगा क्या महाप्रभु का लीला है। तो मैं तब क्लिक किया कि देखिए प्रभुपाद भी जो भागवत में लिख रहे थे, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, 10वां स्कंद जब लिख रहे थे, प्रभुपाद को भी ऐसा लगता है कि अरे अगर मेरा शरीर में छोड़ दूं तो मुझे चैतन्य चरितामृत देना है, और ये 10वां स्कंद तो 90 अध्याय है, बहुत टाइम लगने वाला है, तो लोगों को कैसे मिलेगा वृंदावन लीला। तो प्रभुपाद स्टॉप लगाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कृष्णा बुक लिखना चालू करते हैं, पूरा वृंदावन लीला को एक कृष्णा बुक, छोटा बुक में बिना श्लोक का स्टोरी को लिख देते हैं, ताकि मैं नहीं भी रहूंगा लोगों को वृंदावन लीला मिल जाएगा। वो लिखने के बाद बोलते कि नहीं, अभी मैं गौर लीला भी चालू कर देता हूँ। तो भागवतम को ऐसे ही स्टॉप में रखते हैं, पॉज में रखते हैं, और गौर लीला लिखना चालू करते हैं, चैतन्य चरितामृत और पूरा गौरांग महाप्रभु का लीला लिख देते हैं, और उसके बाद फिर से भागवतम लिखना चालू करते हैं। और भगवान ऐसा इच्छा किया कि प्रभुपाद ने आधे में ही फिर उनको जाना पड़ा। तो देखिए जिस प्रकार एक वैष्णव, उनका कितना दया रहता है कि लोगों को मैसेज देने के लिए, तीव्रता के लिए कितना एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा मध्य लीला में, जो कि आप बुक पढ़ेंगे थोड़ा और लगेगा, अरे अचानक बीच में पूरा समरी क्यों आ रहा है मध्य लीला में, क्योंकि उनका विचार ये था कि मैं नहीं रहूंगा तो आगे कौन लिखेगा। तो इसलिए मध्य लीला के बिगिनिंग में पूरा गौरांग महाप्रभु का लीला को समराइज कर देते हैं, पहला अध्याय में और दूसरा अध्याय में। तो इसी प्रकार जो कुछ भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने जो सुना उसको उन्होंने इस चैतन्य चरितामृत में उन्होंने लिखा। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये बहुत बड़ा देन है, जिनके कारण आज इस कलयुग में हम गौरांग महाप्रभु के लीला को हम पढ़ के जान पा रहे। तो इसके साथ में आगे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, बोला जाता है कि उनके पापा का नाम था गोवर्धन मजुमदार, बंगाल से हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वाराणसी में उनका बचपना गया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाल, फिर ये रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल से हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही एक ऐसा परिवार में थे, बिजनेस, आज के जमाने में जिसे बोलेंगे बिजनेस टाइकून, बोला जाता था कि उनके घर में जो प्रॉपर्टी रहता था, पहले ऐसा नोट पेपर करेंसी नहीं रहता था, पहले गोल्डन कॉइन्स रहता था। तो कितना पैसा उनके जो तिजोरी में उनके अकाउंट में रहता था वो कोई गिन भी नहीं पाएगा, ऐसा बोला गया है कि इतने धनी थे उनके पापा। हैं, उनका नाम क्या है? गोवर्धन मजुमदार। और पापा के भाई थे हिरण, क्या हिरण्य मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, नाम भी हिरण्य है सोना, हिरण्य मजुमदार। तो ये उनके भाई थे, ये दोनों मिलके बिजनेस करते थे और इतना पैसा था, इतना पैसा था, बोलते हैं कि स्वर्ग का जो कुबेर का धन जैसा था ना वैसा धन इनका था, इतना पैसा था, कोई गिनता भी नहीं था कितना पैसा है, अकाउंटिंग रखना भी मुश्किल हो जाता इतना पैसा आता था। तो और हिरण्य मजुमदार जो थे उनके कोई बेटे नहीं थे, और गोवर्धन मजुमदार जी का एक ही बेटे थे, कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। मतलब देर इज नो कॉम्पिटिटर, जो भी परिवार का जो प्रॉपर्टी है सब उनका ही है, अकेला लौता वारिस ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी। सोचिए इतने धनी थे, मतलब उस टाइम में बंगाल का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड होते, इस प्रकार उनका बचपन था। लेकिन बचपन से उनको ये सब ऐसो आराम जीवन में से किसी के प्रति उनका आकर्षण नहीं हो रहा था, उनका आकर्षण और किधर हो रहा था, होता ना कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे अरे प्रभु जी देखो ये सब कुछ है, ये किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, मैंने उसके लिए बिजनेस खड़ा करके दिया। एक व्यक्ति बोल रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा कर दिया और मेरा बेटा को बोल रहा हूँ कि बिजनेस आगे संभालो, वो बोलता है कि मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे तुम्हारी कंपनी में एक नौकरी दे दो 15-20 हज़ार का, मैं करूंगा, ये बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा। तू बोल रहा कि अरे किसके लिए खड़ा किया मैंने बिजनेस, तू नहीं संभालेगा तो अकेला बेटा है, कौन संभालने वाला है? पेरेंट्स को बड़ा टेंशन आ जाएगा ऐसा कोई बच्चा बोलेगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था इस सब में। तो लेकिन उनका इंटरेस्ट किधर जा रहा था? उनका इंटरेस्ट वैराग्य के ऊपर जा रहा था। वो हमेशा देखते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने का मुझे एक अवसर मिलेगा, और उनका हमेशा इच्छा उधर जाता था। और बचपन से ही उनको वैष्णवों का बहुत सुंदर संघ मिला, उनके खुद के जो गुरु थे यदुनंदन आचार्य थे, जो पुजारी थे उनके परिवार में आते थे उनका संग मिलता था, अदेवता आचार्य भी आते थे कभी कभी, तो इस प्रकार उनका बहुत सुंदर वैष्णव का संग मिलता था। कौमारम आचार्य थे प्राज्ञा, बचपन से अगर देखिए अगर वैष्णव का संग मिलता है तो कैसे किस प्रकार उनका आचरण बन जाता है और स्वभाव कैसे बदल जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा चाहते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के आर्मी में ज्वाइन करूं, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते थे। ये टिपिकल कैसे है, ब्रह्मचारी बनना चाहता है बेटा और पेरेंट्स बोलते नहीं बनना है ब्रह्मचारी, नहीं जाने का इस्कॉन मंदिर है इधर जाने का, लेकिन बेटा को ज्वाइन करना है ब्रह्मचारी आश्रम, तो पूरा दोनों के ऊपर। तो ये जहां भी जाते थे उनके साथ बॉडीगार्ड रहते थे, बॉडीगार्ड रहते ना, तो इनके चाजू बाजू बॉडीगार्ड घूमते थे। तो बॉडीगार्ड को सेवा क्या दिया गया है कि ये अगर भागने का प्रयास करेंगे तो इनको पकड़ के लेके आना है घर। तो जहां भी जाते थे सोचो 10 बॉडीगार्ड साइड में, किसी को मतलब कोई मारने इसलिए नहीं, ये भागेंगे तो उनको पकड़ के लेके आना घर में। तो जहां भी जाते थे साथ साथ में बॉडीगार्ड चलते थे। ये थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, और आगे आप सुनेंगे उनका जीवन कथा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। सोचो जो व्यक्ति चलता है तो 10 बॉडीगार्ड साइड में रहते हैं उसके, ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन उनका इच्छा हमेशा कभी रात में कभी दिन में उठ के भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और ये जो बॉडीगार्ड रहता था ओवर 24/7 ड्यूटी रहता था, ऐसा नहीं दिन में खाली, रात में भी ड्यूटी रहता था दूसरे सेट का बॉडीगार्ड, जैसे हमारे सिक्योरिटी प्रभु जी लोग रहते हैं ना, सुबह शाम चेंज होता है ड्यूटी, तो रात को भी भागे तो रात को भी पकड़ के लेके आते थे, 24 घंटा उनके साथ ड्यूटी में रहते थे बॉडीगार्ड्स। तो उन्होंने बहुत बार प्रयास किया घर छोड़ के जाके चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, लेकिन जितने बार भी वो जाने का प्रयास किए बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ के लेके आ जाते थे। भाग भाग के थक गए, बोले कि क्या करूं। तो अंततः एक बार चैतन्य महाप्रभु, और उस समय दोनों पापा मम्मी बहुत डिस्कस करते हैं उनके पिता और माता कि क्या 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 जाए, इसको कैसे बांध के रखें, इतना भाग रहा है। तो बोलते कि चलो अगर चेन से नहीं बांध पा रहे हैं तो ऐसा कुछ करते हैं ताकि भाग ही नहीं पाएगा क्या। माता जी बोले शादी कर दो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह कर देते हैं। बोलते कि जो विवाह किया गया है माता जी, कोई माता जी जो थी बोलते कि अप्सरा जो रहते ना स्वर्ग में उसके जैसे सुंदर माता जी थी, तो वैसा एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह किया जाता है, और पैसा तो कुछ कमी नहीं, लेकिन फिर भी उनका मन उधर ही चैतन्य महाप्रभु का मिलना है। और फिर क्या करते हैं, एक बार चैतन्य महाप्रभु आके शांतिपुर में आके आए रहे थे। चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर मतलब बंगाल में आए रहते हैं। तो ये देखता रहे चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, पास में आए, पापा को बोलते कि मैं जाता हूँ चैतन्य महाप्रभु मिले। पापा बोल नहीं किधर जाने का नहीं हो इधर। बोला अरे महाप्रभु इधर आए हैं पास में आए, क्योंकि पापा को तो पता था ये तो जाएगा तो आएगा नहीं, इसको तो वैराग्य पसंद है भाग जाएगा। तो बोले कि नहीं जाना नहीं होगा। तो ये देखते अभी जाना तो है, अभी नहीं भेज रहे तो क्या करूं। तो उन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगाया तो बोले कि एक काम करो ना बॉडीगार्ड्स को भी भेज दो और बॉडीगार्ड के साथ ही जाता हूं, और आने का तो गारंटी है ना, भाग तो नहीं पाऊंगा। तो फिर उनके पापा सोचते हैं कि हाँ ठीक है अभी ठीक है, तो बॉडीगार्ड्स के साथ भेजते हैं उनको। तो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को मिलकर बोलते हैं महाप्रभु मुझे आना है आपके साथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु बोलते कि अरे तुम ये मरकट वैराग्य तरह क्यों कर रहे हो, वो मरकट देखा है मरकट, हमारे भी यहाँ पर एक मरकट आ गया था अभी पता नहीं नहीं दिख रहा है। मरकट मतलब जो मंकी रहते हैं बंदर रहते हैं, तो बंदर कभी कभी लगता है कि बंदर को देखेंगे तो लगेगा अरे क्या वैराग्य है, खाली वेजिटेरियन खाना खाता है, फल आहार करता है, कुछ नहीं खाता है, ऐसा ही रहता है जंगलों में रहता है। लेकिन उसका देखेंगे तो इंद्रिय भोग में नंबर वन भी रहता है, बोलता है कि एक झुंड एक मरकट और बहुत सारे मादा बंदरों के साथ घूमता है 10, 15, 12, 13। सोचो अभी उसका इंद्र भोग का कितना इच्छा रहता है। मैं इस बार वृंदावन गया था तो एक ब्रजवासी मुझे बोले कि प्रभु जी आपको पता है उसमें से कौन राजा है। बोला पता नहीं कौन राजा है, मुझे कैसे पता, मैं थोड़ी बोल कौन राजा है। बोले नहीं 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 वो बंदर में से देखो एक बंदर का पूंछ सीधा है ऊपर है 90 डिग्री 90 डिग्री, वो राजा है। बोला अच्छा। बोला हाँ जो राजा रहता है उसका पूंछ खड़ा रहता है, बाकी सबका देखो नीचे। तो ये सबसे मेन राजा है और ये इंद्र भोग कर रहा है इस झुंड में, ये मेन पुरुष है। बोला अच्छा। बोला सोचो उसका कितना इंद्र भोग का रहता है, इसको बोलते मरकट वैराग्य, मतलब इंद्र भोग है करने का इच्छा लेकिन बाहर दिखा रहे हैं कि नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते था मरकट वैराग्य तरह क्यों हो रहा है, सब चीज करने का सही समय आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो और भक्ति करते रहो, जब समय आएगा जो करना होगा आपको कृष्ण स्फूर्ति दे देंगे। तो ठीक है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी घर आ जाते हैं, और फिर घर आने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वहां पर नित्यानंद प्रभु आते हैं पानीहाटी में, और नित्यानंद प्रभु आते हैं जब पानीहाटी में तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चलता है कि नित्यानंद महाप्रभु आए, चलो उनका थोड़ा कृपा लेते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर आते हैं उनको मिलने के लिए। दूर से ही ऐसे खड़े रहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो नित्यानंद प्रभु बोला रहे चोर कौन खड़ा है उधर दूर से, क्योंकि पास में आना चाहिए ना, दूर में ऐसा छुप छुप के क्यों देख रहा है। तो बोले लेके आओ उसको पास में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आके उनके पैरों को स्पर्श करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो मेरे ऊपर, मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहता हूँ लेकिन मिल ही नहीं पा रहा हूँ, जितना प्रयास कर रहा हूँ ये मेरे बॉडीगार्ड्स पकड़ के लेके आ जा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपका बिना कृपा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब नित्यानंद प्रभु बोलते कि पहला आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा फिस्ट स्पॉन्सर करो। बोलते पैसा तो बहुत है आपके पास, एक बड़ा फिस्ट स्पॉन्सर करो और जितने वैष्णव है बंगाल में सबको यहाँ पर बुलाओ और सबको भरपेट खिलाओ, क्योंकि जब प्रसाद खाते हैं डिवोटीज वैष्णव तो सब प्रसाद खाने के बाद खुश हो जाते हैं और सबका आनंद से ब्लेसिंग मिलता है। तो बोले कि एक ऐसा बड़ा फिस्ट ऑर्गेनाइज करो और सब वैष्णवों को प्रसाद खिलाओ, फिर आगे मैं देखता हूँ क्या करना है। तो उस फिस्ट को क्या बोलते हैं, चीड़ा दही फेस्टिवल बोलते हैं, और फिस्ट बहुत सिंपल बताए, चीड़ा दही, चीड़ा को दही में डालो और खिलाओ, और चीड़ा को दूध में डालो और खिलाओ, ज्यादा मतलब इतना बड़ा महंगा नहीं है, सिंपल है, बट भाव प्रेम से सबको खिलाने को इम्पोर्टेंट है। तो सबको खिलाते हैं चीड़ा दही फेस्टिवल पर, बंगाल से सब लोग आ जाते हैं, बोलते कि इतना लोग आ जाते हैं कि खड़े होने के लिए जगह नहीं था, तो लोग गंगा नदी के अंदर जाके आधा पानी में खड़े होकर खा रहे थे, इतना लोग आते हैं। और सब भर पेट खाने के बाद, सब लोग आने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप सब वैष्णव आइए और रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि बेचारा जो चाह रहा है करने के लिए वो कर पाए। तो सब वैष्णव आते हैं और सब एक साथ बोलते हैं हरि बोल हरि बोल। तो सब हरि बोल बोलते हैं ना, हरि बोल मतलब सबका कृपा मिलता है, सबका ब्लेसिंग मिलता है। तो रघुनाथ दास सोचे एक शॉट में कितना ब्लेसिंग मिला वैष्णवों का। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तू क्या चाह रहा है, क्या करना चाहते हैं आप। बोले कि हम एक ही चीज चाह रहे हैं, क्या, कि हम चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं।
अरे तुम्हारा पापा इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना पैसा है, अप्सरा जैसा सुंदर स्त्री है, छोड़ के चला जाएगा? बोले हमें कुछ भी इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना और उनके साथ रहना। तो नित्यानंद प्रभु इतना खुश हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु अपना पैर उठा के रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर धारण करते हैं, रखते हैं, बोले कि बेटा तेरा जो भी इच्छा है ये इच्छा तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है, रघुनाथ दास गोस्वामी का सब दरवाजा खुल जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज हम सीखने सीखने को मिल रहा है कि नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु बलराम जी गुरु तत्व है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास कर रहे थे डायरेक्ट जाने के लिए, डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट करे, नहीं 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 जाओ जाओ बाद में बात। तो भगवान कृष्ण को कोई भी जीवात्मा डायरेक्ट अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे सिखा रहे हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमको गुरु का शरण लेना पड़ेगा। जब गुरु का शरण लेते हैं, गुरु को सेवा करते हैं और गुरु को जब संतुष्ट करते हैं, उनका कृपा से भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लीला में हम ये सीख रहे हैं। और जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जब संतुष्ट करते हैं नित्यानंद प्रभु को और उनका कृपा जब मिलता है, तुरंत घर आने के बाद एक मास्टर प्लान बनाते हैं फिर कि अभी कैसे भागूंगा। लेकिन अभी जो भागेंगे उसके साथ मर्सी भी है, कृपा भी है। तो एक रात को ऐसा ही मिडनाइट को भाग जाते हैं घर से। और जैसे ही भागते थे क्या होता है, जो गार्ड्स रहते थे पीछे पकड़ने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा भगवान उसको उनको दूसरा बुद्धि देते हैं। जो एक्चुअली बंगाल से पूरी का जो डायरेक्ट रास्ता रहता था, शॉर्टेस्ट रास्ता रहेगा ना, जो शॉर्ट फॉर्म जहां जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई भागेगा तो शॉर्टकट पकड़ेगा ना, क्योंकि भाग के कितना भागेगा, तो शॉर्टकट में जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जंगल का रास्ता पकड़ते हैं, घना जंगल के अंदर अंदर जाते हैं। सोचो मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि व्यक्ति उधर जाएगा, और जंगल के रास्ते से पूरी जाने के लिए निकलते हैं। तो बहुत सारे बॉडीगार्ड निकल जाते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन वो रास्ते में जा रहे हैं घोड़े गाड़ी से, वो पूरी भी पहुंच जाते हैं, उनको मिलते नहीं किधर गए। और ये बेचारे जंगल जंगल से रास्ते में धीरे धीरे जा रहे हैं, उनको 15 दिन लग जाता है पूरी पहुंचने के लिए। सोचो जिसके घर में इतने नौकर चाकर, इतने पैसा, क्या क्या खाने पकवान को मिल रहा होगा, बेचारे को अभी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। 15 दिन ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं जंगल में, रास्ते में कुछ मिल गया, कंदमूल कुछ मिल गया तो खा लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ऐसा करते करते 15 दिन के बाद पहुंचते हैं पुरी में, और पुरी में पहुंचते हैं, पुरी में चैतन्य महाप्रभु वहां पर रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सामने आते, चैतन्य महाप्रभु, अरे इनको कहीं देखा देखा लग रहा है। बोला अरे ये रघुनाथ दास, क्योंकि उनका पूरा हुलिया बदल गया होता है 15 दिन आने के बाद जंगल में, सोचो क्या रहेगा। बोला अरे ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी है, करोड़पति बाप का बेटा है, ये कौन सा हुलिया बना के आया है, क्या हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी बोले प्रभु और लौटा हूं मत मुझे, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ बस आपका सेवा करने के लिए, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार कर लो आप। तब चैतन्य महाप्रभु फिर उनको भेजते नहीं, और चैतन्य महाप्रभु उनको क्या करते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंप देते हैं। इसलिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे रघुनाथ हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो गए हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी, तो इसलिए उनको बोलते हैं स्वरूपेर रघु, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंप देते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है, ललिता सखी है ना, और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, रति मंजरी है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी है। तो राधा रानी का सेवा ललिता विशाखा डायरेक्टली करते हैं, जो मंजरी रहते हैं वो अष्ट सखियों को हेल्प करते हैं खास करके, तो इसलिए उनको सौंपते हैं ललिता सखी के अंडर में, स्वरूप दामोदर के गोस्वामी के अंडर में, कि आज से आप जो भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलेंगे आप वो सेवा करना। और रघुनाथ गोस्वामी को उनको देखिए कैसे कृष्ण लीला और चैतन्य लीला दोनों देखेंगे तो सब जो जिसका सेवा भी है उसी प्रकार ही दिया गया है, राधा कृष्णा मंजरी सखी सब जो है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलते अरे बेचारा का शरीर देखो पूरा पतला हो गया, कुछ खाया नहीं है 15 दिन से, उसको खिलाओ थोड़ा जगन्नाथ महाप्रसाद। तो पूरा स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूरा महाप्रसाद लेके आते हैं, पूरा भरपेट उनको खिलाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाते हैं और सब कुछ आनंद में चल रहा है। और फिर वो सोचते हैं कि अरे चल क्या रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है।
तो बोले कि मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ, ना इन लोगों से मैं सेवा लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मेरे जो मालिक है स्वरूप दामोदर गोसाई मुझे खिला रहे हैं मंदिर से, मेरे लिए महाप्रसाद ला के। तो बोले कि ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोसाई आते थे, रघु आपके लिए प्रसाद लाए हुए, निकल जाते थे पीछे दरवाजे से। बोला अरे किधर गया? तो ऐसा 2-3 दिन वो प्रसाद खाए नहीं। तो फिर स्वरूप दामोदर गोसाई बोला अरे क्या हुआ, प्रसाद नहीं खा रहा है, इसके लिए मैं इतना मेहनत से लेके आ रहा हूँ जगन्नाथ महाप्रसाद। और ये क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर कितने लोग गए हैं, गए ना, तो एंटर करते हैं जो मेन जो द्वार है उसको सिंह द्वार बोलते हैं, उस सिंह द्वार में खड़े रहते थे। तो खड़े रहते थे मतलब क्या है, जो भी कोई आएगा कुछ दान दे देगा, कुछ भीख में दे देगा, तो उसको ग्रहण करते थे। जो भी सूखा रोटी, कुछ सूखा राइस अन्न जो भी मिलता था वो खाते थे, और 56 भोग खाना बंद कर दिए। तो जो भी मिलता था दान में भीख में उसको खा के अपना भजन कीर्तन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अरे कैसा है रघुनाथ? तो स्वरूप दामोदर गोसाई बोले पहले पहले तो अच्छे से खा रहा था, अच्छा खासा हेल्थ भी बन गया था, पता नहीं अभी क्या हो गया, अभी खाना ही बंद कर दिया। बोले क्यों, अभी क्या खा रहा है फिर? अभी वो जाके सिंह द्वार में खड़ा रहता है और जो कोई भी कुछ भीख में देते हैं तो खाता है। बोला अरे ऐसा है क्या? ओके, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और तब तक सोचिए उनके पिता माता उधर से, उनका बॉडी गार्ड सब पहुंच जाते हैं पूरी में, पूरा रिसर्च करते हैं किधर है, और उनको पता चलता है कि ये तो रघुनाथ गोस्वामी सिंह द्वार में खड़े होके भीख मांग रहे। सोचो कैसा लगेगा गोवर्धन मजुमदार को, जो कि बंगाल का सबसे धनी व्यक्ति है, उसका बेटा सिंह द्वार में कोपिन पहन के भीख मांग रहा है खाने के लिए, कैसा लगेगा उसको। तो वो क्या करते हैं पता है, बंगाल से एक पूरा जो कुकिंग करने का कुक्स का टीम को भेजते हैं, खाना के साथ पैसा के साथ पूरा गाड़ी भेजते हैं, पूरा बंगाल से आता है। क्यों आते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी का सेवा करने के लिए। उधर से टीम आता है, कुकिंग किचन पूरा सेटअप आता है, जैसे अभी कार्तिक यात्रा हमारा किचन जा रहा है ना यहाँ से पूरी, उधर से किचन सेटअप आता है उनको कुकिंग करके खिलाने के लिए। सब लोग आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, आते हैं उनको सेवा करने के लिए। रघुनाथ दास क्या क्या लेके आए, पापा ने क्या क्या भेजा है, अरे इतना पैसा भेजा है, ठीक है ठीक है पैसा इधर रखो, और क्या क्या भेजा है। बोले अरे इतना कुक क्या करेंगे। बोले ठीक है आप लोग सब जाओ, आप लोग का कुछ काम नहीं इधर, आप लोग सब रिटर्न जाओ, यू टर्न करो यहाँ पर, मैं पैसा का देख लेता हूँ क्या करना है। तो सबको भेज देते हैं, और जितना पैसा रहता है उस पैसा से क्या करते हैं, जितने सारे वैष्णव, खास करके आज द्वादशी था ना, कल एकादशी था, खास करके द्वादशी दिन के थोड़ा अच्छा प्रसाद रहता है ना, क्योंकि पहले दिन थोड़ा उपवास रहता है तो द्वादशी में थोड़ा वेराइटी रहता है। तो हर द्वादशी को वो क्या करते थे, हर द्वादशी को वहां पर वो फीस्ट करते थे, और फीस्ट में जितने सारे वैष्णव है सबको इतना सारा प्रसाद खिलाते थे, सबको भरपेट खिलाते थे, और पैसा तो आते रहता था हमेशा उधर से, पैसा का कुछ कमी नहीं, और खिलाते रहते थे। फिर एक दिन सोचे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पापा का पैसा लेके आ रहा हूँ और सबको खिला रहा हूँ। फिर सोचते कि ये पैसा बिजनेस से कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, क्या जरूरत है पैसा, तो एक पैसा भी लाना लेना बंद कर देते हैं, बोले कि पैसा भी भेज के लेके जाओ, नहीं चाहिए पैसा। और फिर जो सिंह द्वार में रहते थे खाने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद वहां नहीं दिखते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोसाई बोलते कि अरे इधर भी नहीं दिख रहे, अभी किधर खा रहा है, किधर है? तो अभी हमारा जैसे गोवर्धन अन्न क्षेत्र चालू है ना, तो अन्न क्षेत्र धाम में चलता है, तो पूरी में भी जहां पर अन्न क्षेत्र चलता था तो वहां पर जाके खड़ा होते हैं। तो उनको लगता है कि आज ये भीख दिया तो कल मैं उसको देखता हूँ तो लगता है कि आज भी भीख देगा क्या, ये कल दिया था। तो जैसे कोई एक प्रोस्टिट्यूट कैसे सोचती है कि ग्राहक को देख के, वैसा वो बोलते कि मैं भी एक प्रोस्टिट्यूट जैसा हूँ कि आज देगा कि नहीं, कल देगा कि नहीं, इससे अच्छा है इसे खड़ा ही नहीं रहता हूँ यहाँ पर। और छोड़ के कहाँ पर जाते हैं, अन्न क्षेत्र में, अन्न क्षेत्र में जो मिलेगा शांति से वो खा लूंगा। तो स्वरूप दामोदर गोसाई बोलते चैतन्य महाप्रभु ये अभी तो ये भी खाना बंद कर दिया, अभी लोग कुछ अच्छा भाषा दे देते थे उसको, अभी जाकर अन्न क्षेत्र में जो मिलता है वही खाता है। बोला अच्छा। चैतन्य महाप्रभु ठीक है। और कुछ दिन के बाद सोचते हैं अरे यहाँ पर भी अच्छा तो खाना मिलता है, सब भरपेट मिलता है, नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो अन्न क्षेत्र में खाना बंद कर देते। और अब जगन्नाथपुरी में देखेंगे जो भी महाप्रसाद बचता है उसको ऊपर से फेंक देते हैं एक जगह पर, और यहाँ पर सब नीचे गिरा रहता है, और जैसे ही नीचे गिरता है सब गाय आके खाना चालू करते हैं नीचे से, और गाय भरपेट खाने के बाद कुछ कुछ महाप्रसाद जो थोड़ा मतलब पुराना हो जाता है, थोड़ा जो सड़ जाता है, तो गाय भी नहीं खा पाती है, वो मुंह में करके फिर थूक देती है गाय। तो रात में जाते थे 11-12 बजे, जो ऐसा रहता था उसको ले सोच के ही डर लगता है ना, अरे बाप रे कैसा रहेगा। तो उसको निकालते थे और उसको घर में लेके आते थे और एक एक चावल का दाना को पानी में धोते थे और उसको हरे कृष्णा बोल के प्रसाद ग्रहण करते थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब ये सुनते तो उनका पूरा ये सब फ्यूज हो जाता है। बोले चैतन्य महाप्रभु अभी ये जो कर रहा है ना, कोई सपना में भी सोच नहीं सकता ये क्या कर रहे हैं। ये उधर भी खाना बंद कर दिया और जो गाय भी नहीं खाती है, फेंक देती है उल्टी करके, उसको उठा रहा है और उसको धो के एक एक अन्न को खा रहा है, ऐसा कर रहा है चैतन्य महाप्रभु। अच्छा ऐसा कर रहा है क्या? ठीक है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु रात को जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में, और जब जा रहे होते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक एक राइस को धो के एक द्रोण में रख के उसको प्रसाद सेवन करने के लिए रखे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जाते हैं क्या करते हैं बताएं, उसको हाथ से एक मुठा पूरा उठाते हैं और अपने मुंह में डाल देते हैं और खाते। रघुनाथ दास को बोले, अरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप भगवान है कृष्ण है, मैं क्या कर रहे हैं? उनको बोले कि अरे मैं बड़ा बड़ा व्यंजन खाया हूँ मंदिर में, लेकिन ये आपका जो खा रहा हूं ना, ये तो अमृत की तरह स्वाद मिल रहा है, ये क्या है? तो इससे देखिए, इससे ये होता है कि कोई व्यक्ति किस भाव से कैसे भक्ति में खा रहा है, उस भक्ति भावग्राही जनार्दन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छते। भगवान उस भक्ति को ग्रहण करते हैं। भगवान बोलते कि इतना स्वादिष्ट, ये तो ऐसा भोजन मैंने कभी किया नहीं था। रघुनाथ गोस्वामी तो कितना धन्य है, ऐसा अच्छा अच्छा व्यंजन खाता है तो घर में बैठ के, बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है उसको आस्वादन कर रहे हैं इस अन्न को खा के, कि तुम्हारा वैराग्य अभी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और बहुत खुश हो गए थे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी का ये सब, उनका वैराग्य देख के। और अंततः चैतन्य महाप्रभु एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाते हैं अपने पास और उनको दो चीज गिफ्ट में देते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या दिया था? कंठी माला दिया था, कंठी में धारण करके कंठ में भागवत कथा नित्य बोलते थे। इनको देते हैं एक गोवर्धन शिला देते हैं और एक कुंज माला देते हैं, ये आप रखो पास में। जो गोवर्धन शिला को साक्षात चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में धारण करके रोते थे राधा कृष्ण के विरह में, उस गोवर्धन शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं और कुंज माला देते हैं, आप इनका धारण करो। और इस प्रकार कुछ दिन के बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, आप सबको पता रहेगा चैतन्य महाप्रभु 24 साल गृहस्थ में थे और 24 साल संन्यास आश्रम में थे। जब उनको 48 साल हो जाता है तो चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में वहां पर विग्रह में प्रवेश होके अप्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी रह नहीं पाते हैं और वो भी अप्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही सोचिए, अभी चैतन्य महाप्रभु जो उनके इष्ट देव थे रघुनाथ दास गोस्वामी वो चले गए, और जिनके द्वारा सेवा उनको प्राप्त हुआ था स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो भी चले गए। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते, अभी मैं बच के अभी जिंदा रह के करूंगा क्या? अभी मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु चले गए और मैं जिनके द्वारा सेवा प्राप्त किया था, जिनका सेवा कर रहा था, वो भी चले गए, अभी क्या करूंगा मैं? तो वो निर्णय लेते कि मैं अभी आत्महत्या कर देता हूँ। तो बोले कि आत्महत्या करूंगा, लेकिन जाके वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के मैं छलांग दे के आत्महत्या कर लूंगा। तो ये निर्णय लेते हैं और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी से गोवर्धन आ जाते हैं। और जैसे ही गोवर्धन आते हैं तो वहां पर कौन मिलते हैं? रूप सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं। बोले कि अरे आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था, आज आपका साक्षात दर्शन हो गया यहाँ पर। तो रूप और सनातन बोलते कि नहीं, बोलते नहीं, मैं एक दूसरे उद्देश्य से आया हूँ, मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ गोवर्धन से चढ़ के। तो रूप बोलता, अच्छा आत्महत्या करने के लिए? क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले गए, अभी जी के मैं क्या करूंगा? तो रूप गोस्वामी बोले, हम क्या कर रहे हैं जी के? फिर हम भी कर लेते फिर आत्महत्या। अगर भगवान को प्राप्त करना, आत्महत्या करके भगवान को प्राप्त करना इतना आसान होता तो सब लोग कर देते, जब सनातन गोस्वामी भी जब उनको भी वो बीमारी हो गया था चमड़े का, तो आके वो भी जगन्नाथ जी का रथ के सामने छलांग लेने का सोचे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे सनातन, अगर आत्महत्या करके कोई कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो मैं 1000 बार आत्महत्या कर लेता, उससे प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को भक्ति करके, साधना करके हमको प्राप्त करना पड़ेगा, और भगवान ने जो सेवा दिया है उस सेवा को हमको करना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी बोलते कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? बोले हमें दो चीज दिया है, दिखाओ क्या है। बोले ये गोवर्धन शिला दिया है और एक कुंजमाला दिया है। देखो ये हमारा कौन सा मंदिर में ही है गोवर्धन शिला कुंजमाला? राधा गोकुलानंद मंदिर में। यहाँ पर राधा गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे तो ये दो चीज का दर्शन कर सकते हैं। छोटा सा एक रेक्टेंगुलर पत्थर रहेगा, वो गोवर्धन शिला है। एग्जैक्टली जैसा है ओरिजिनल, हमने वैसा ही बना के रखा है। तो वो शिला एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था, और छोटा सा कुंजमाला। तो रूप गोस्वामी चैतन्य मनोविष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या है, हृदय में क्या है, उनको पता है। तो रूप गोस्वामी अभी परपोट देते हैं इसका अर्थ क्या है। बोले कि हे रघुनाथ, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि आप ये गोवर्धन शिला जो आपको दिया है, उसका अर्थ ये है कि आपको गोवर्धन जी महाराज के पास निवास दिया है, और कुंजमाला दिया है उसका ये अर्थ है कि कुंजमाला मतलब क्या है, राधा रानी को बहुत प्रिय है, और राधा रानी का को प्रतीक माना जाता है। देखिए कुंजमाला में जाएंगे तो 3 प्रकार का रंग रहता है, एक लाल, काला और एक पीला भी मिलता है, कभी कभी बीच में एक पट्टी आता है, व्हाइट कलर का एक कॉम्प्लेक्शन आता है। तो राधा रानी का जो उनका अंग का जो कलर रहता है वो स्वर्ण कलर रहता है, व्हाइट इज कॉम्प्लेक्शन रहता है, वो राधा रानी का स्वर्ण चेहरे का रंग रहता है। और जो लाल रहता है बोला जाता है कि राधा रानी का ओंठ है, और जो काला रहता है उसको बोलते हैं कि राधा रानी का मस्करा है, जो काल में काजल लगाते हैं। और कभी कभी बोलते हैं, आचार्य कमेंट्री में बोलते हैं कि राधा रानी जब मस्करा लगाती है और जब कृष्ण को सामने देखती है तो मस्करा आंख में नहीं लगा पाती है, और किधर लग जाता है, ओंठ में लग जाता है, है? तो इसीलिए ये कुंज माला जो रहता है ये राधा रानी का स्वरूप है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य मनोभिष्टम, बोले कि हे रघुनाथ गोस्वामी, तुम्हारे द्वारा कितना कुछ सेवा करना चाहते हैं गौरांग महाप्रभु, और तुम आके यहाँ पर आत्महत्या बोल रहे हैं। अरे तुम्हें गोवर्धन महा गोवर्धन गिरिराज महाराज दिया है तुम्हें वास करने के लिए, जाओ गिरिराज महाराज के पास जाओ, और उस गिरिराज महाराज जी का जब परिक्रमा करते हैं तो वहां पर राधा कुंड आता है जो कि राधा रानी से अभिन्न है, उस राधा कुंड में जाके तुम निवास करो, राधा रानी का सेवा करो, इसीलिए तुम्हें इस गोवर्धन शिला और कुंजमाला दिया है, और तुम बोल रहे हो यहाँ पर छलांग मारोगे, तो ठीक है जैसे आपका इच्छा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना प्लान कैंसिल करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करके राधा कुंड के तट में आके वहां पर अपना भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में निवास करना शुरू करते हैं। और राधा कुंड में ऐसे बहुत सारा लीलाएं हैं, समय कम है, थोड़ा 2-3 लीला चर्चा करके समापन करेंगे। तो बोला जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य तो आपने देख लिया पूरी में है, अभी पूरी से वृंदावन आए, सोचे वैराग्य अभी क्या आगे क्या होने वाला है। तो वृंदावन में बोला जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में कितना माला जप करते थे, हरिदास ठाकुर 3 लाख करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में 1 लाख हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, 1 लाख एक दिन में, और उसके साथ 1000 दंडवत करते थे, 1000 दंडवत करते थे उसके साथ, यहाँ लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है, 1000 वाचिक प्रणाम करते थे वैष्णव को, उसके साथ अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, 1000 मानसिक प्रणाम करते थे वैष्णव को, है ये बोलते ना कर्मणा मनुषा वाच, शरीर से 1000 दंडवत करते थे फिजिकली, वचन से 1000 प्रणाम करते थे वैष्णव को, प्रणाम बोलते ना प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु, ऐसा 1000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, मन से 1000 वैष्णव को जो पास में नहीं है दूर में उनको सोच के प्रणाम करते थे, एवरीडे उनका ये साधना था। इतना नहीं, उसके साथ 3 घंटा गौर कथा एवरीडे करते थे, 3 घंटा कथा भी करते थे। हम कभी कभी बोलते ना, अरे अरे मेरा लेक्चर है, टाइम नहीं है, क्या ऐसा बात दे दिया, ये सब करने के बाद में वो 3 घंटा हमारा एक विद्यापीठ क्लास हो जाता है 3 घंटा में, एक चैप्टर 3 घंटा गौर कथा करते थे। क्योंकि रूप गोस्वामी बोले कि अरे रघुनाथ, हम तो चैतन्य महाप्रभु के पास कभी रहे नहीं, हमारा भाग्य नहीं रहा, इधर ही सेवा मिला हमको। सनातन गोस्वामी बोले हम भी कभी चैतन्य महाप्रभु के पास रहे नहीं, रघुनाथ भट्ट भी नहीं रह पाया, तू ही एक ऐसा खुश नसीब है जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा, वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15-16 साल रहा तुमने, और चैतन्य महाप्रभु का सब कुछ तूने देखा है, तो कृपा करके थोड़ा बताओ हमको, तुम्हारा मुख से थोड़ा सुन लेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते सब जितने सारे वृंदावन के गोस्वामी गण रहते थे सब आके, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा करते थे, भागवत कथा बहुत अच्छा करते थे, लेकिन चैतन्य गौर लीला नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी गौरांग महाप्रभु का लीला ज्यादा देखा नहीं। खाली रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही व्यक्ति थे जिनको कि बहुत सुंदर से चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला देखा और देखने के बाद उनका संग सबको मिल रहा है। तो हर रोज उनका फिक्स रहता था 3 घंटा क्लास राधा कुंड में, और वृंदावन के जितने सब गोस्वामी आते थे बैठते थे, खुद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बैठ के सुनते थे, 3 घंटा गौर कथा सुनते थे। तो पहला गौर कथा ऑफिशियली कोई चालू किया तो रघुनाथ दास गोस्वामी, ये उनका हर रोज का साधना था इतना बस। 1 लाख माला जप करना, 1000 दंडवत प्रणाम करना, और 1000 वाचिक प्रणाम करना, 1000 मानसिक प्रणाम करना, और 3 घंटा गौर कथा करना। ये बोला जाता है कि दुनिया प्रलय हो जाएगा, पत्थर से लकीर मिट जाएगा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का साधना इससे कम नहीं होगा, ये उनका साधना था। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कौन से आचार्य हमारे? प्रयोजन आचार्य। सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य है कि किस प्रकार जीव भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान है और हम उनके दास हैं। रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य है, भक्ति रसामृत सिंध लिख के दिए हैं किस प्रकार भक्ति क्या जाएगा। लेकिन जो कृष्ण प्रेम जो है कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, वो प्रेम क्या रहता है, उसको देते हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनको प्रयोजन आचार्य बोलते हैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर सोचा कि रघुनाथ दास गोस्वामी की, क्योंकि वहां पर 2 तालाब जैसा था, राधा कुंड को गोरी कुंड बोलते थे, कृष्ण को काले कुंड बोलते थे, ऐसा 2 तालाब जैसा था, ऐसा कुंड जैसा नहीं था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चले बोले इसको कुंड बनाते हैं थोड़ा, तो लेकिन पैसा तो चाहिए, बेचारा सब पैसा तो छोड़ के आ गए, नहीं तो पापा भेज देते, अभी बहुत लंबा गैप हो गया, अभी मांगना भी ठीक नहीं लगता है, अभी कैसे मांगेंगे। तो लेकिन सोचते थे कि राधा कुंड का रिनोवेट करना है, कैसे करूं कैसे करूं। तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा वैष्णव बद्रीनाथ जा रहा था और वहां पर जाके कुछ बड़ा डोनेशन देने वाला था। तो बद्रीनाथ तो उनको वहां पर विष्णु जी बोलते हैं कि अरे डोनेशन इधर मत दो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जाके वो राधा कुंड में एक बाबा जी बैठा है उसको पैसा दो, उधर बहुत कुछ करने वाला है। तो वो उधर से बद्रीनाथ से आता है वृंदावन, बोलता है कि कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी? बोले ये बाबा जी। बोले कि अरे कृष्ण खुद मुझे बोले कि आपको पैसा देना है, आप पैसा लो और जो करने का इच्छा है कर लो भाई इधर। तो इतना पैसा देते हैं और उस पैसा से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। तो पहले तो सोचते हैं कि दोनों को ऐसा चौकोना स्क्वायर बना देंगे, जैसे राधा कुंड स्क्वायर है ना, श्याम कुंड को भी ऐसे ही सोचे थे मास्टर प्लानिंग में, होता है ना हम लोग प्लानिंग करते हैं महाराज आते कभी चेंज कर देते, तो प्लानिंग उन्होंने भी किया था स्क्वायर बनाने का। लेकिन रात में एक सपना आता है, 5 पांडव आते हैं, बोले कह रहे हम 5 पेड़ यहाँ पर खड़े हैं, हमको मत काटो, हम आपका कथा हर रोज सुनते हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं, आप थोड़ा हमको बचा के बना दो। तो उनको बचाने के लिए श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, अब वैसे भी कृष्ण थोड़ा टेढ़े रहते हैं तो इसलिए श्याम कुंड भी थोड़े टेढ़े हैं, हमारे भी देखेंगे तो वैसे ही पेड़ हैं और थोड़ा टेढ़े हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है जो रघुनाथ दास गोस्वामी बनाते हैं। और बहुत सुंदर लीला आता है, एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे, इतना भजन में डूब गए थे कि वहां पर जंगल था ना वृंदावन, उस टाइम में जंगल 500 साल पहले जंगल रहता था, शेर भी आते थे, एक शेर आके राधा कुंड का पानी पी रहा था और ये वहां से यहाँ पर जप करें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, और वहां पर कृष्ण खड़े हैं छड़ी लेके कि शेर अगर खाने आएगा तो बीच में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं दूर से, देखते हैं बोले अरे क्या देख रहा हूँ, सच में देखते हैं, अरे कृष्ण इनका सेवा करने के लिए छड़ी लेके खड़े। तो सनातन गोस्वामी देखते ही उनका पसीना छूट जाता है, ये हम भगवान का सेवा करने के लिए आए हैं ना, भगवान इसका सेवा कर रहे हैं। तो बोलते कि अरे रघुनाथ थोड़ा सुनो बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा तुम अपना भजन कुटीर बना लो और भजन कुटीर में अंदर जाके दरवाजा बंद करके भजन करो, नहीं तो यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं तुम्हारा सेवा के लिए,
तुम उनको बुला रहे हो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा सेवा करने के लिए खड़े हैं धूप में। तो रघुनाथ बोलते ठीक है बना देता हूँ भजन कुटीर, चले जाते हैं सनातन गोस्वामी। और एक दिन ऐसे ही घूम के आ रहे हैं, और ऐसे ही 12 बजे का टाइम है और भजन चल रहा है इनका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये देख रहे हैं कि राधा रानी स्वयं खड़ी है अपने पल्लू लेके खड़ी है, और 12 बजे का धूप है ना, धूप सर के ऊपर गिर रहा है, तो पल्लू से उनको सर को ढक के खड़ी है। ये फोटो आप देख सकते हैं उनका रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि में। और इतना धूप हो रहा है, 12 बजे का धूप, सोचो वृंदावन का धूप, और राधा रानी का पसीना यहां से निकल रहा है चेहरे से। सनातन गोस्वामी देख के ही बेहोश होके गिर जाते हैं, बोले ये तो हद हो गई, हमारे इष्ट देव जो राधा रानी है इसका सेवा कर रहे हैं और पसीना इनका निकल रहा है, और ये वहां से हरे कृष्णा कर रहे हैं नीचे बैठ के। तो फिर थोड़े टाइम के बाद फिर उठते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि रघुनाथ बहुत हो गया अभी, है तू कर क्या रहा है यहाँ पर, तू हमारे इष्ट देव राधा रानी आके तेरा सेवा कर रही है और उनका पसीना निकल रहा है और तू छाव में बैठ के हरे कृष्ण कर रहा है। बोले कि कुटिया बना रहे कि नहीं, लेकिन हमारे रघुनाथ गोस्वामी इतने नम्र थे, सनातन गोस्वामी को पता है कभी नहीं बनाएगा नहला, ये कभी नहीं बनाने वाला, हमें ही बनाना पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी खुद ब्रजवासियों को लेके रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भजन कुटीर बनाते हैं। बोले कि बेटा इसके अंदर बैठ के तू भजन कर, अभी बन गया घर ना, बाहर मत बैठा, अभी राधा कृष्ण फिर आके खड़ेंगे तेरे लिए। तो फिर रघुनाथ गोस्वामी भजन कुटीर के अंदर भजन कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनका तबीयत बहुत खराब हो जाता है। तो बोलते अभी क्या हो गया है इसको, अभी तो सब कुछ करके दिया और पूरा फीवर आ रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, सोए हैं। तो सनातन गोस्वामी को चिंता आ जाता है क्या हो गया, वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य आके हाथ पकड़ता है, बोला अगर इनको तो इंडाइजेशन हुआ है। बोले क्या ये इंडाइजेशन, ये तो हमारे हर 3 दिन में एक बार छाछ पीते हैं, वृंदावन में हर 3 दिन में एक बार थोड़ा छाछ पीते थे, बोलते 3 बूंद, पता नहीं 3 बूंद कैसे पीते होंगे, मुझे बोला थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा छाछ पीते, छाछ हम छाछ पीते ना ग्लास में डक 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 उड़ा देते हैं, द्रोण में थोड़ा छाछ पीते थे 3 दिन में एक बार, ये था उनका डाइट, और उसके साथ 1000 दंडवत, अभी वो सब सोच लीजिए। तो ये इसको इनको इंडाइजेशन किसको होता है, जो हैवी ज्यादा खाते हैं ना। तो बोले कभी हो ही नहीं सकता वैद्य जी, फिर से देखो अच्छे से देखो। वैद्य बोला अरे मेरा 100%, मेरा कभी गलती नहीं हुआ अभी तक, इनको पक्का डाइजेशन है, वो भी बताता हूँ कैसे डाइजेशन हुआ है, स्वीट राइस खाए हैं इन्होंने। बोले क्या स्वीट राइस। तो फिर थोड़े टाइम के बाद उठाते हैं, बोले अरे क्या बोल रहे हैं, बोले नहीं नहीं वो सच बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या हुआ है मैं जब भजन कर रहा था, ये कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी, रति मंजरी है, तो मैं भजन करते करते मैं गोलोक वृंदावन में गया था और राधा रानी इतना खुश थी, अपने हाथों से मुझे स्वीट राइस खिला रही है, मैं बोला पेट भर गया बस हो गया, और फिर खिला रही है, अभी राधा रानी को कैसे मना करूं, मैं खाते जा रहा हूँ खाते जा रहा हूँ खाते जा रहा हूँ, अभी पेट का दर्द हो रहा है, इंजेक्शन हो गया। तो सनातन बोला अरे ये तो क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये थे हमारे कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी, सोचिए। तो ये था उनका भजन, ये था उनका लीला। तो एक बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति उनको इतने स्तर में थे, एक व्यक्ति उनको आके एक, क्योंकि एक छोटा सा द्रोण में वो थोड़ा सा छाछ पीते थे, तो एक भक्त सोचता है कि बेचारे इतना ही छाछ पीते हैं, क्योंकि द्रोण जो रहता था ना वहाँ कदम्ब के वृक्ष रहता था, तो कदम्ब के वृक्ष के पत्ता वो अपने आप द्रोण जैसा हो जाता था, तो उसमें जितना मिलता था थोड़ा एक द्रोण में पीते थे, बाकी सेकेंड टाइम नहीं लेते थे। तो एक भक्त ने सोचा वृंदावन में कुछ कुछ ऐसा भी कदम्ब रहता है, उसको उसका पत्ता बड़ा रहता है, तो अगर एक बड़ा पत्ता वाला दे दूं तो ज्यादा छाछ थोड़ा आ जाएगा, पेट भर जाएगा, तो एक बड़ा पत्ता वाला कदम्ब का पत्ता लाके उनको छाछ देते हैं। तो रघुनाथ बोले कि अरे हर रोज तो छोटा छोटा आता था, आज बड़ा कैसे हो गया। बोले कहाँ से लेके आया, आना मैं कौन सा जगह, मैं वो सखी स्थली से लेके आया हूँ। बोले क्या सखी स्थली से लेके आया, वो फेंक देते हैं, वो क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को प्रेम करते हैं और एक पार्टी है जो कि कृष्ण को प्रेम करते हैं, और राधा रानी के दूसरे पार्टी विपक्ष पार्टी, उनके जो हेड कौन है, चंद्रावली। तो राधा रानी को जब थोड़ा कृष्ण उनको थोड़ा गुस्सा दिलाना होता है तो कृष्ण चंद्रावली के साथ मिल देते हैं, तो ऑटोमेटिक राधा रानी मान लीला में चली जाती थी, तो उनका मान लीला को लाने के लिए भगवान ये चंद्रावली के साथ जाते थे। तो ये जो सखी स्थली है वो चंद्रावली वहां रहती थी, वो जगह उनका है, उनका गोपियों का। तो उस जगह से तूने ये पत्ता लेके आया, जो मैं तो राधा रानी का पार्टी का हूं, मैं कैसे चंद्रावली सखी का उस एरिया का पेड़ का पत्ता का छाछ भी होगा, फेंक देते हैं।
सोचो ये स्तर में थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हमेशा राधा कृष्ण लीला में निमग्न होके उनके लीला में उनका चिंतन करते हुए वो हमेशा डूबे रहते थे। और उन्होंने बहुत सारा पुस्तक भी लिखा है, दान के लिए चिंतामणि लिखा है, मन शिक्षा लिखा है। हाल ही में उर्मिला माता जी आई थी, उन्होंने मन शिक्षा को ट्रांसलेट किया है। तो मन शिक्षा लिखा है उन्होंने हमारे जैसे साधकों के लिए, कि प्रयोजन तत्व तक अगर पहुंचना है किस प्रकार मन को हमको नियंत्रण करके साधना में लगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर पुस्तक है मन शिक्षा, वो रघुनाथ दास गोस्वामी खुद लिखे हैं। और फिर दान के लिए चिंतामणि, जब पहुंच जाते हैं साध्य में, तो राधा कृष्ण का जो अंतरंग लीला क्या क्या है उसको सब दान के लिए चिंतामणि में लिखते हैं। तो ये सब दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी। आइए इस पावन अवसर पर आज एक दिन में, इस द्वादशी तिथि में हमने चर्चा किया है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा उनका भी आज तिरुभाव तिथि है, और उसके बाद हमने चर्चा किया रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रयोजन आचार्य है उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। तीन तीन गोस्वामी का एक दिन में आज तिरुभाव तिथि है। इसलिए हमने देखा था वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में तीन गोस्वामी समाधि है, क्योंकि तीन गोस्वामी का उनका मित्रता भी बहुत घनिष्ठ में था, इसलिए वैष्णव लोग इन तीनों को स्मरण करने के लिए एक जगह पर उनका समाधि बने हैं, तीन गोस्वामी समाधि। आइए इस पावन तिथि पर इनको प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन करें, और इस साधना भक्ति जो भक्ति हम कर रहे हैं उसमें हमको शक्ति दे, ताकि इस मार्ग में हम आगे जा पाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, उनके कृपा से एक ना एक दिन हम भी इस प्रयोजन तत्व को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो जैसे हमारे तीनों आचार्य जो हैं श्री वृंदावन धाम में किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया और कैसे हमारे लिए इतनी सारी लीलाएं उन्होंने छोड़ी ताकि जिससे हम प्रेरणा ले सकें, और वो अत्यंत मधुर रूप से श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु ने हमको बताई कि सुनी हुई लीला भी यत नूतनयसी, यानी अपने उत्साह से उसको और भी नया बना बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उनका हम धन्यवाद देंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी हम जयानी लो प्रेमधन गाएंगे और उसके पश्चात संसार दामानल गुरु अष्टकम गाकर आरती होगी और सबके लिए द्रोण प्रसाद होगा, और केवल छाछ नहीं है उसमें। हरे कृष्ण।